ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत शशांक, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज आ रहा है। आयोग के 27 आयुक्तों में से 22 इस बार 2 दिवसीय यात्रा पर विभिन्न पक्षों के बीच चल रही बातचीत में हिस्सा लेंगे, जो भारत और ईयू के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। शशांक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी नमस्कार, धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि यूरोपीय संघ के साथ पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंध कैसे विकसित हुए हैं, प्रमुख मोड़ क्या रहे, खासतौर से 2004 के रणनीतिक साझेदारी समझौते के साथ, और अब हम कहाँ खड़े हैं।
मुझे याद है 2004 में जब मैं विदेश सचिव था, जो यूरोपियन संघ के उस समय प्रधान थे, उनके राजदूत ने आके मुझसे बात की और कहा कि हम लोग रणनीतिक साझेदारी के लिए आपसे दस्तखत करना चाहते हैं। और ये बात उससे पहले ही अमेरिका और भारत के बीच में भी एक रणनीतिक साझेदारी के लिए एग्रीमेंट हुआ था जनवरी में, और उसके बाद में यूरोपियन संघ ने भी हमसे ये बातचीत की थी। इस समय हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा है कि यूरोपियन संघ के जो 27 आयुक्त हैं, उनका कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, वो पहली बार पूरा का पूरा करीब करीब, आपने कहा 27 में से 22 आए हैं, तो वो अपने प्रधान के साथ में आए हैं। तो अवश्य ये बहुत ही नई सोच दर्शाता है यूरोपियन संघ की तरफ से, क्योंकि पहले उनका हमेशा सोच रहता था कि वेस्ट का अमेरिका और जो ईयू है उनको साथ में मिलके चलने में ही बेस्ट उनके लिए सॉल्यूशन है। और वो हमेशा कहते भी थे दुनिया में जो शांति और प्रॉस्पेरिटी हम लाना चाहते हैं उसमें हम लोग मिलके चल रहे हैं, और आप लोग ज्वाइन कीजिए, हम मदद करेंगे, आप भी जो है OECD में भी ज्वाइन कीजिए और हमारे पार्टनर बनिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्योंकि हम चीन के साथ में भी इस तरह का सोच रहे हैं, और भारत जो है एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, तो हम चाहते हैं कि भारत के साथ में भी इस तरह की बात बने। तो ये बातचीत शुरू हुई 2004 में, लेकिन मुझे लगता यह है कि अब ऐसा मोड़ आ गया है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, जबकि अब अमेरिका और यूरोपियन संघ आपस में तरह की भावनाएं आ गई हैं कि मालूम नहीं है कि वो वाकई में उतने अच्छे दोस्त रहे हैं या नहीं रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन संघ सोचता है कि अमेरिका यूरोप के हितों की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर रहा है, और अमेरिका का मानना यह है कि यूरोप ने अपना सारा सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के पल्ले में झाड़ दिए और कहा कि हम तो पैसे देंगे नहीं, आप पैसे दीजिए, हथियार दीजिए और अपने आप ऑर्गेनाइज कीजिए। तो जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से, चूंकि अब अमेरिका ने कहा है कि नहीं, यूरोपियन संघ के लोगों को, जो नेटो के यूरोपियन देश हैं, उनको 5% अपना योगदान देना चाहिए डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए, और जो पहले उन्होंने 2% से भी कम था, तो पहले 2% की बात की थी ट्रंप साहब ने जब लास्ट टाइम थे। तो हमारे ख्याल से ये बात इस तरह की चली है कि अब उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया एक प्रकार से, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो शांति लाना चाहते हैं, हम रूस से बात कर रहे हैं, और जो रूस से बात करी है अमेरिका ने, उसमें यूरोप को बिल्कुल उन्होंने इन्वॉल्व भी नहीं किया। अगर आप देखें तो ट्रंप साहब से मिलने के लिए सबसे पहले गए इसराइल के प्रधानमंत्री, उसके बाद जापान और जॉर्डन, और फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो यूरोपियन संघ का कोई भी या यूरोप का कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अब जाके राष्ट्रपति मैक्रोन गए हैं, और अब उम्मीद है कि शायद वो यूरोपियन संघ में तो नहीं है, लेकिन यूरोप की तरफ से शायद अब वो यूके के प्रधानमंत्री शायद अब जाएंगे अमेरिका में। तो ये काफी नए इस तरह के हालात बन रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में हो सकता है कि जल्दी ही शांति वार्ता की बात शुरू हो जाए मजबूत तरीके से, और ऐसे में हो सकता है कि यूरोप के ऊपर दबाव पड़ेगा शांति वार्ता के लिए अच्छी पहल करें, कुछ जो भी उनको शर्तें ऐसी एक्सेप्टेबल हो सब देशों को कि शांति पूरे तरीके से आ सके, तो वो उनको कुछ इस तरह का प्लान रखना होगा। दूसरा यह है कि यूरोप के ऊपर भी जैसे टैरिफ वॉर का खतरा आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति ट्रंप जो अपने को ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट के रूप में मानते हैं, तो उन्होंने सब जगह कह दिया कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा कनाडा के ऊपर भी, मेक्सिको के ऊपर भी, यूरोपियन संघ को भी उन्होंने कहा हम आपके ऊपर भी लगा देंगे। तो एक तरीके से सारा ही जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था जो चल रहा था इस तरीके से, कम उस टैरिफ पे अब लगता है कि वो आगे बढ़ता जाएगा, टैरिफ
जी
प्रोटेक्शन वॉल्स वगैरह खड़ी करी जाएंगी, तो ऐसे में यूरोपियन संघ और भारत को आपसी हितों को देखना आवश्यक है।
जी यानी आपने बहुत अच्छे मोड़ पे चर्चा को पहुंचा दिया है सुशांत जी। हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत कई वर्षों से चल रही है, मुख्य चुनौतियां इसकी क्या हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, हम आपसी संबंधों को देखते हुए विचार करें तो।
देखिए, ये बात है कि जो चीजें यूरोप में बेचता है, तो जो प्राइमरी या बहुत ही पार्शली प्रोसेस्ड कमोडिटीज होती हैं, उन पे तो मानता हूँ कि यूरोप से कम टैरिफ्स वगैरह लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग होती है या ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स भारत बेचना चाहता है, तो उनमें ड्यूटी काफी पीक स्तर पर पहुंच जाती है। दूसरा, भारत जो है जिस तरह के सर्विसेज सेक्टर में जो मोड 4 कहलाता है WTO के, उसमें वो चाहता है कि उसमें ज्यादा एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो पाती है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स हो या इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट के मसले पर। एक तीसरी चीज निकलती है कि उस सब जगह यूरोप में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, अमेरिका में भी, और वो जो हमारे लोग वहाँ काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ता है, विच इज इन एडिशन टू द टैक्सेशन। लेकिन अगर वो वहां से वापस आते हैं तो कई बार उनको वापस नहीं मिलता है पैसा उनका जो दिया हुआ है, वो एक तरीके से एडिशनल टैक्स बन जाता है। तो उसमें आवश्यक है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। यूरोपियन संघ और यूरोप के जो देश हैं वो हमेशा से इंसिस्ट करते रहे हैं कि भाई आप वाइन्स और स्पिरिट्स में जो है आप ड्यूटी कम कीजिए, मार्केट ओपनिंग कीजिए।
जी
अब भारत में वो प्रायोरिटी की चीज नहीं है, लेकिन यह है कि वो इंसिस्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में वो नहीं लाना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भरता का जो भारत का स्लोगन है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है। उसमें वो चाहते हैं कि हम जो है ऑटोमोबाइल मार्केट खोलें उनके हाई एंड ऑटोमोबाइल इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन कई और मसलों में, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ, सेमीकंडक्टर्स में हुआ, हमें लगता है ये है कि इसमें काफी आगे प्रोग्रेस की जा सकती है। और आपने देखा होगा कि जैसे फ्रांस और भारत में तो बहुत ही आपस में उन्होंने सोलर सेक्टर में और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने को चेयर भी करे हैं इंटरनेशनल मीटिंग्स को। और हमारे ख्याल से जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज होते हैं उसमें भारत के अपना बहुत कमिटमेंट है, लेकिन जिस प्रकार से जो कार्बन टैक्स वगैरह यूरोपियन संघ लगाता है वो भारत को मंजूर नहीं है। वो चाहता है कि ये थोड़ा सा सोच विचार हो दोबारा से यूरोपियन संघ के देशों में।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे, एक समय था जबकि यूरोपीय संघ मिडिल ईस्ट और भारत के बीच कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही थी, उस मसले पर कहाँ तक आगे हम बढ़े हैं और क्या उसकी दिशा है वर्तमान में?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस पे बहुत उत्साह था। भारत खुद चाहता है कि जितने भी कॉरिडोर्स बन सकते हैं भारत के और जो हमारे व्यापार में प्रमुख क्षेत्र हैं उनके साथ में, तो हम समझते हैं कि इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि भारत के जो और कॉरिडोर्स हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन पे तो तवज्जो ना दी जाए, खाली ये बनाया जाए। लेकिन इसमें ये जरूर है कि ये G20 के अवसर पर जब भारत ने इसके मीटिंग अपने यहाँ रखी थी, उस समय ये एग्रीमेंट हुआ था, IMEC जिसको कहते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, तो उसमें उम्मीद थी कि उसमें तेजी से आगे प्रगति होगी और उसमें भारत और मिडिल ईस्ट के देश भी आपस में जुड़ेंगे। और साथ में जिस प्रकार से हमने और कॉरिडोर्स बनाए हैं, चाहे ईस्ट में ट्राइलेटरल हाईवे इनिशिएटिव के थ्रू करे हैं या नॉर्थ वेस्ट में हमने चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान और ईरान के साथ में करे थे, और सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप तक जाने के लिए। अब हमको लगा ये कि थोड़ी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि इसमें एक तरफ तो इसराइल और हमास का युद्ध हुआ, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ गई पूरे मिडिल ईस्ट में, तो बातचीत नहीं चल पाई, और अब उम्मीद है कि शायद उसमें कुछ आगे प्रोग्रेस होगी। दूसरी तरफ जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चाबहार पोर्ट के लिए जो हमको स्पेशल एग्जम्पशन दे रखी थी सैंक्शन से, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको नहीं दे पाएंगे। तो वो एक तरीके से भारत के जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उससे बहुत धक्का मिलेगा। तो हम समझते ही हैं कि हमें बात जारी रखनी होगी और यूरोपियन संघ को भी अपने साथ में मिलाना होगा, ताकि इसपे जो है कम से कम टेक्निकल रूप से तो हम सब तैयारी कर सकें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, दूसरा जो सॉफ्ट एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कस्टम्स के बारे में या इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के बारे में या और भी जो इस तरह की और चीजें होते हैं, उनके सबके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड होता है उस सबको भी करा जाए, एज एंड वेन जब भी हम आगे मूव करते हैं तो उसमें आसान रहेगा। खाली ये नहीं है कि एक ही एस्पेक्ट पे हम आगे बढ़े और बाकी एस्पेक्ट हम ना कर पाए।
यहाँ पर एक सवाल बनता है, दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में या कह लें कि डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के साथ हमारे सहयोग के क्या आयाम हैं और इन्हें हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं? खासतौर से अपने प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर कुछ चीजों को खुला होना चाहिए, वहां क्या देख रहे हैं आप? यूरोपीय संघ के साथ हमारे संबंध किस दिशा में जाते दिख रहे हैं?
ऐसा है कि जो भारत और विश्व के जो खासकर वेस्ट के देश हैं, हम लोगों का फिलॉसफी पेटेंट्स प्रोटेक्शन के बारे में या नए इनोवेशंस वगैरह होता है टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में बिल्कुल अलग विचार रहा है। वह यह है कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि जो भी अगर आगे इंटेलिजेंस हो, जो भी हमारा नई टेक्नोलॉजीज हो, उसमें काफी ओपनली शेयर होना चाहिए, ओपन इसमें डोर पॉलिसी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज की भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने आप ही कहा है कि नहीं, हम लोग जो है ओपन प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे। और उसकी वजह से ये भी हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म नए निकल कर आ गए हैं जिसमें प्रोटेक्शनिज्म वगैरह की भावना नहीं रखी गई है। जैसे अभी डीप सीक करके चाइना का वो निकल कर आया है, तो वो कहते हैं कि इसमें भी उनको फायदा मिला है। तो भारत भी इसमें उम्मीद रखता है कि उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और भी जो नए टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आगे हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे खासकर स्पेस का क्षेत्र है, उसमें हमने काफी अच्छे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने प्रूव कर दिया विश्व के सामने कि हम किसी से कम नहीं है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वर्कर्स हैं। इसमें हम सोचते हैं कि यूरोपियन संघ को थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। अब अगर देखिए कुछ नए जो स्थिति बन रही है, और वो चाहते हैं कि अब चीन जो है इससे आगे निकलता जा रहा है और भारत को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में इंजीनियर्स वगैरह हर साल निकलते हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका के कुल इंजीनियर्स को मिला के जुला के भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको साथ में लेकर चला जा सकता है। और भारत के जो प्रोफेशनल्स के मूवमेंट्स का है, उसके लिए भी हम सोचते हैं कि शायद ज्यादा अच्छा माहौल बन सकता है। तो हम लोगों को पूरे तरीके से खुलकर बात करनी चाहिए इस मसले पर, ताकि इससे भारत का आत्मनिर्भरता का गोल है वो भी फुलफिल हो, और साथ ही साथ यूरोप और भारत के जो डेमोक्रेटिक देश हैं वो अपने संबंधों को ज्यादा आगे बढ़ाकर विश्व में शांति और आर्थिक सद्भावना की फीलिंग पैदा कर सकें।
यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ईयू भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में सम्मिलित है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $135 बिलियन तक पहुंच गया। सर्विसेज सेक्टर में भी इस दौरान $53 बिलियन का कारोबार दोनों पक्षों के बीच में हुआ है। हम किन किन क्षेत्रों में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से शुल्क को लेकर जो नए आयाम उभरते दिख रहे हैं ट्रम्प साहब के आने के बाद, तो उसमें कहाँ कहाँ हमारे लिए अवसर बन रहा है और उनके लिए भी अवसर बनता, किन क्षेत्रों में देख रहे हैं आप?
अभी कुछ ऐसा लगता है कि अमेरिका का मार्केट जो है, चाहे यूरोप के लिए हो चाहे भारत के लिए, हो सकता है कि उसमें काफी फ्लक्चुएशंस आए, कुछ उसमें कठिनाइयां भी आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि यूरोप और भारत देखें कि किस तरीके से एक दूसरे का जो मार्केट्स हैं उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स वहां एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, जबकि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं भारत के, इस समय यूरोपियन संघ के सभी कमिश्नर्स भारत में आए हैं, तो उनके साथ में खुलकर बात करनी चाहिए कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप अपनी हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि हम 4 साल तक तो मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ में बातचीत करने में थोड़ा सा तकलीफ यही रहेगी कि वो टैरिफ्स के मसले पर पूरे तरीके से हल नहीं निकल पाएगा। यूरोप तो खैर कह सकता है कि हम जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं। भारत को देखना होगा किस तरीके से जो उसको डाइवर्ट किया जा सकता है, अमेरिका के अटेंशन को अपने और चीजों को, जो अमेरिका भारत में बेचना चाहता है, या भारत से अगर हमारे यंगस्टर्स को वहां पढ़ने के लिए विचार देना चाहता है या भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है कई चीजों को, तो वो करा जाएगा। लेकिन यूरोप के साथ में जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हमारी हैं, तो हम वहां उनको बेचने के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम वहाँ मार्केट ढूंढ सकते हैं, और वहां से जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हमको मिल सकते हैं बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पिछले रूस यूक्रेन युद्ध के समय में ये फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर वगैरह पे बहुत तकलीफ रही है पूरे विश्व भर में, तो वो हमारे ख्याल से वो आवश्यक है कि इन सबको पूरे तरीके से हम करें। लेकिन ये जैसे फ्यूल की बात करी जाए, तो यूरोप में और भारत में आपस में इसका फायदा रहा है। यूरोप के जो मार्केट जो बहुत ही एकदम से बंद हो गए थे, उन्होंने खुद ही इतनी सैंक्शन लगा दी थी रूस के ऊपर, तो उसकी वजह से उनके यहाँ तो काफी रिसेशन की हालत सी पैदा हो गई थी। वो तो भारत ने जो है उनको रिफाइंड प्रोडक्ट्स वगैरह अपने यहाँ से करके भेजे ग्लोबल मार्केट से, क्रूड ऑयल वगैरह लेकर, तो उससे काफी कुछ उनके स्थिति ठीक रही है। और मुझे लगता यह है कि यूरोप के देशों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है कि किस प्रकार से भारत ने जो है अपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे उनके साथ में मिलजुल कर काम किया है। भारत ने हमेशा से यही कहा है कि हम तो शांति चाहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बात करते रहे हैं दोनों तरफ से, रूस से भी और यूक्रेन से भी, कि किस तरीके से शांति वार्ताओं को जो है सफल बनाया जा सके।
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शशांक जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत शशांक, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।